अगला श्लोक देखते हैं। भावयतेश सत्वेना लोकान् वैलोक भावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु। भावयति एष, एष मतलब इन सबका, इन सबका अर्थात जितने भी जीवों की सृष्टि भगवान ने करी है। भावयति, भावयति को शिव स्वामी कहते हैं पालयति, प्रभुपाद जी वही बात बोल रहे हैं, पालन करते हैं इन सब का भगवान, पालन करते हैं। कैसे पालन करते हैं? सत्वेना, सत्वगुण के द्वारा। कहां पालन करते हैं? लोकान, पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड भर में। बहुत अच्छी बात इस बात में महाराज बोल रहे थे कि भाई देखिए, नौकरी करिए ठीक है, अपना काम करिए, लेकिन चिंता मत करिए कैसे चलेगा क्या होगा। वैसे मैं समझता हूं भक्त लोग इतना चिंता तो नहीं करते होंगे, ये करते हैं आप लोग? नहीं करते ना, चलता ही रहता है ना, चलने ही चल ही जाता है। और वस्तुतः भक्तों की तो ऐसी व्यवस्था होती ही है, क्योंकि आप लोग यज्ञ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ भगवान व्यवस्था कर लेंगे। वैसे तो सभी के लिए कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे हो, यज्ञ कर रहे हो, जप कर रहे हो, तो भगवान विशेष व्यवस्था करते हैं। अपने जीवन में आप लोग अनुभव कीजिएगा, मैंने तो बहुत बार अनुभव किया है, हम तो रोज ही अनुभव कर रहे हैं कि हमें, हम एक भक्त को फोन किया, आलू का प्राइस है क्या आज? वो बहुत बड़ा प्रश्न था मेरे लिए। सब्जी की हमारे मार्केट के मार्केटिंग करते हैं, उनसे पूछा कि बेच के लिए भक्त आलू खरीद के लाए 20 रुपए किलो, तो हमने कहा मुझे लग रहा है कि महंगा खरीद के लाए हो, जरा पूछता हूँ कि रेट क्या है कितने। उसने बोला हाँ, जब से ज्वाइन किया तब से मैंने भी सोचा नहीं कि आलू का रेट क्या है, खाली हम लोग का यही हम लोग डिस्कस करते हैं। आलू की सब्जी बनी नहीं आज ठीक से, आज जो है थोड़ा मिर्ची तेज थी, तेल तेज था, लेकिन यह कभी चर्चा नहीं कि आलू का रेट तेज था कि नहीं। और हम अकेले ब्रह्मचारी नहीं, बहुत सारे हैं, कोई चिंता नहीं है, भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग यज्ञ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से वन व्यवस्था करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में भी व्यक्ति कुछ कार्य करना होता है, लेकिन हाय हाय चिक चिक करके व्यक्ति को जिंदगी नहीं बिताना चाहिए। हाय हाय चिक चिक समझते हैं आप लोग, पहले तो करते ही रहे होंगे, हाय ये नहीं मिला है, और चिक 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 चिक, हाय हाय करता है पति और चिक चिक करती है पत्नी, शायद ऐसा होता है, सुना है मैंने, तो हमने दूर से ही सुना है इस प्रकार से, ये नहीं प्राप्त हुआ, वो नहीं प्राप्त हुआ। भक्ति में आने के बाद ये गुण आ ही जाना चाहिए कि जितना भगवान ने हमको दिया है उसी में हम संतुष्ट रहें, है कि नहीं? ये तो हम अपने जीवन में भी सभी भक्तों के संग, अच्छा जो भक्ति कर रहे हैं उसी में अनुभव होता है, तीन धोती कुर्ता है बस हो गया, चौथे की क्या जरूरत है, पांचवे की क्या जरूरत है। तो ये आप लोगों को भी लगता है कि प्रभु जी हमेशा इसी कलर में क्यों आते हैं, ब्लू में आने चाहिए, ग्रीन में आने चाहिए? लेकिन हम देखते हैं भक्त लोग कुछ ऐसे हो जाते हैं कि भाई उनका बीड बैग जो है उनके कुर्ते से मैच करना चाहिए, कितना बड़ा हेडेक है ये, क्या आवश्यकता है इसकी, तो ये ऑब्जर्वेशन हो जाता है। खैर, लेकिन सच्ची में भक्त को ये देखता है कि अधिक से अधिक समय भगवान की सेवा में लगाऊं। ये जरूर हाय हाय भक्त की रहती है कि मैं भक्ति नहीं कर पा रहा, वो तो उतना भक्ति कर रहे हैं हम तो नहीं कर पा रहे, उतना पढ़ रहे हैं, उतना जप कर रहे हैं, हम तो कमी कर रहे हैं, ईर्ष्या भाव से नहीं, इस भाव से कि मैं कर नहीं पा रहा, मुझे और अधिक करना चाहिए। तो खैर, बात यह है कि पूरे ब्रह्मांड भर में वह सबका पालन कर रहे हैं, यानी कि इंद्र का पालन भी वही कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का पालन भी वही भगवान कर रहे हैं, वह मतलब सामान्य रूप सभी का करते हैं। लोक भावना भूत भावना, ये सब शब्द एक ही प्रकार का अर्थ होता है, सभी जीवों का, सभी लोगों का पालन करने वाले स्वामी। और क्या कह रहे हैं? लीला अवतार अनुरत, लीला अवतार करके, कौन से लीला अवतार, उसका वर्णन अभी तीसरे अध्याय में शुरू हो जाएगा। गर्भोदकशय विष्णु, कर्णोदकशय विष्णु, शिरोदकशय विष्णु, ऐसे भगवान की सृष्टि लीला है, और अन्य जितने अवतार हैं उसको ग्रहण करके भगवान सबका पालन कर रहे हैं। अनुरतः तो आप समझ रहे हैं, लगे रहते हैं भगवान। किन किन योनियों का? देव तिर्यक नरादिशु, देवताओं में, पशुओं में और नरादिशु। मैं एक बार स्मरण आ रहा, तिर्यक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो जानवर है वो ऐसे चलते हैं, टेढ़े चलते हैं, तो इसलिए उनको तिर्यक कहा जाता है। तो वहां पे उनके पालन कर रहे हैं। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी मतलब भगवान देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व ग्रहण में रहने वाले के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। ये दो इसके दो अर्थ हैं। एक श्रीधर स्वामी जी इसका अर्थ ले रहे हैं कि भगवान सत्वगुण को स्वीकार करके जगत का पालन करते हैं। प्रभुपाद जी का अर्थ ये ले रहे हैं कि जो लोग शुद्ध सत्व में हैं या भगवान के भक्त हैं उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान लीला करते हैं, तो दोनों अर्थ हमें लेना चाहिए। भागवत के श्लोकों के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तात्पर्य, भौतिक ब्रह्मांड अनगणित है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। ये लाइन तो बड़ी स्पष्ट है। एक बात शायद समझ में नहीं आ रही होगी कि ब्रह्मांड अनगणित कैसे हैं। पढ़ा हुआ है, समझ में आ रहा है? भगवान महाविष्णु के रोम कुपों से अनेक अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, केवल एक ही ब्रह्मांड नहीं है। प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह है, यह भी स्पष्ट है। बहुत सारे ग्रह आप देखते हो और उसमें विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। एक बात हंसी की है कि जब ही भी एलियंस की बात होती है, एलियंस मतलब दूसरे ग्रहों पर रहने वाले जीव, तो ऐसा दर्शाया जाता है कि बड़े भयानक हैं और वे राक्षस जैसे होंगे, उनकी दो आंखें ऐसे निकली हुई होंगी, हमेशा ऐसा दर्शाया जाता है। लेकिन अब हम जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंद्र इत्यादि जितने देवता हैं उनके आगे हम लोग तो मेढक जैसे लगेंगे, है कि नहीं? जब भी शास्त्रों में सुंदरता का वर्णन आएगा तो ये नहीं कहेगा कि कोई भी स्त्री होगी भाई ये इस मिस यूनिवर्स की तरह लगती है, ऐसा कभी नहीं बोला जाएगा। बोलेंगे अप्सरा की तरह लगेगी और उसकी तरह लगेंगी, या कोई पुरुष की शक्ति के बारे में बोलेंगे तो यहाँ के किसी हीरो से कंपेरिजन नहीं होता है। मानवों का कोई कंपेरिजन नहीं है। जैसे कि क्या नाम था, मोहिनी मूर्ति जब प्रकट होती है तो असुर लोग सोच रहे हैं कि कहाँ की हो, नाग लोक की हो कि इंद्र लोक की हो, कहाँ की हो, ये नहीं बोले मनुष्य लोक की हो। तो मनुष्य जो है सुंदरता में, बल में, बुद्धि में कहीं देवताओं के बराबर नहीं है। तो यह सोचना एलियंस जो है, एलियंस का मतलब इस ग्रह के बाहर रहने वाले लोग सब राक्षस जैसे हैं, गंदे दिखाई पड़ते हैं, ये इसलिए बोला जा रहा है, ऐसा लोग धारणा करते हैं ताकि लोग सोचे कि इंसान बड़े श्रेष्ठ हैं। या जैसे हम लोग को अभी कन्विंस किया जा रहा है कि आपके पूर्वज तो सब बंदर थे, आदिवासी थे, और आप जो है बहुत उन्नत हो, जबकि शास्त्र क्या बोलता है, वो लोग सब बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। सूत गोस्वामी जी ने एक बार भागवत सुनी पूरी याद हो गई, हम लोग 5000 बार भी सुनेंगे तो भी एक श्लोक याद हो जाए तो उसके लिए बड़ी कठिनाई है कि नहीं? तो ये अंतर, ये सोचना नहीं चाहिए कि हम लोग उन्नत हो रहे हैं बाकी हम लोग की अवनति ही हो रही है। कलयुग में सब अवनति ही हो रही है। तो बात ये हो रही है कि विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं, सभी का पालन भगवान करते हैं अकेले ही। भगवान विष्णु इनमें से एक छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी कथा है। एक बार मैंने सुना था प्रवचन में कि लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को बोला, क्या आप सभी जीवों का पालन करते हैं? कहते हाँ। संदेह है? कहते हैं हाँ। नहीं, संदेह तो नहीं है, लेकिन फिर लक्ष्मी जी ने क्या किया, एक कीड़े को लिया और एक डिब्बी ली और डिब्बी में उस कीड़े को बंद करने वाली थी, तो ऐसे बंद कर रही थी और वो सोच रही अब बंद कर दूंगी तो इस कीड़े को कौन खिलाएगा। बड़ी अच्छी कथा है। लेकिन जब उन्होंने एक हफ्ते के बाद उसको खोला तो भी कीड़ा जी रहा था। तो हुआ क्या था, प्रायः तिलक में हम लोग चावल लगाते हैं माथे में, होता है ना दिवाली में, तो माता लक्ष्मी के माथे का जो एक चावल का दाना था वो उस अलक्षित रूप से उस डिब्बी में गिर गया और उसमें वो बंद हो गया था। पता नहीं कथा कहाँ की है, कथा बड़ी अच्छी है। और इस प्रकार से वह एक हफ्ते तक आराम से उसके लिए चावल का एक दाना बहुत था, खाता रहा मजे से। तो भगवान समझा रहे थे किस प्रकार से सभी का पालन करते हैं। एक कथा मैंने और सुनी है, और इस कथा, ये कथा महाभारत से है, लेकिन मैं इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन भक्तों से सुना इस बात में कि एक चिड़िया थी, वो बहुत दुखी थी क्योंकि जहां युद्ध होने वाला था वहां उसके अंडे थे। सुना होगा आपने शायद कथा को। और वो सोच रही थी मेरे अंडे मारे जाएंगे, तो कब किसने आशीर्वाद दिया था, मैं समझता हूँ भगवान कृष्ण ने ही आशीर्वाद दिया था, जो तुम स्मरण आ रहा है। और कुछ ऐसा हुआ था कि एक हाथी मारा गया और उसका जो कुंडल था या घंटा उसके ऊपर गिर गया और वो पूरे 18 दिन तक जो है उसके बच्चों की रक्षा, बाद में बच्चे पैदा हो गए अपने उड़ गए। तो दिखाते हैं कि भगवान हर किसी की रक्षा करते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, स्वभाव है भगवान का, कि भगवान का स्वभाव कल्प वृक्ष की तरह है। कल्प वृक्ष सभी की सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है, लेकिन मांगोगे तब, मांगेंगे नहीं, भगवान के शरण में जाएंगे ही नहीं, तो भगवान फिर उदासीन रहते हैं, ठीक है जो करना चाहे करो, ये रहता है। भगवान विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। इससे पहले कि हम जाएं आगे, अब आप लोगों के लिए छोटी सी क्विज है। अब आप ये बताइए कि इंसानों के समाज में भगवान किन किन अवतारों में अवतरित हुए। इनको हम लोग तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे ही, लेकिन भगवान के अवतारों का स्मरण हो जाए थोड़ा, तो आप लोग के लिए क्विज की जा रही है। अब आप बताइए कि इंसानों के समाज में भगवान किन किन अवतारों में प्रकट हुए। मत्स्य अवतार, ना ना, राम, एक साथ नहीं बोलना है। ओके, प्रभु जी की धाम, आप उनको दीजिए माइक। रुक जाइए, हाँ बोलिए, माइक कौन है?
कृष्ण
अवतार, और
परशुराम,
यस,
बामन,
नहीं, चेतन महाप्रभु, यस, और कपिल मुनि इंसानों में आए। हाँ ठीक है,
कपिल मुनि, जैन,
नहीं जैन वाले कपिल मुनि नहीं, कपिल देव, मतलब कपिल देव, हाँ ऋषभ देव आए, यस। देख सकते हैं कि मनुष्य में अवतार लेने की बहुत जरूरत है ना, ज्यादा जरूरत है, बहुत सारे अवतार है। और कौन से अवतार आए? बुद्धदेव आए, यस, कपिल, कल्कि अवतार आने वाले हैं, ठीक। और देवताओं में, माताओं की तरफ से माइक दीजिए, देवताओं में कौन आए? अरे आप लोग हार जाएंगे कि उसमें 1 2 3 वामन अवतार, वामन अवतार देवताओं के इसमें आए थे ना, नहीं पता? वामन देव जो हैं अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में आए, और उनके किसके भाई हैं? इंद्र के भाई हैं। यज्ञ अवतार मेरे को नहीं, यज्ञ अवतार इंसानों में आए थे, ये हंस अवतार आए थे ब्रह्मा जी और चार कुमार की प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और फोर कुमार, हाँ चार कुमार भी आते हैं देवताओं के समाज में, नारद भी आते हैं ऐसे करके। अच्छा अब जानवरों में चले जाएं, यस, प्रभु जी लोग बताएंगे जानवरों में किन के पास आते हैं। वराह अवतार आते हैं, ठीक है, और मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, और कश्यप, वेरी नाइस। अब इस सब स्मरण करने से क्या फायदा होगा? नरसिंह देव भगवान कहीं नहीं आते, ना बीच में, ना उधर, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा? आप तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे, उस मंत्र पे लिखा है कि जो इस प्रकार से सुबह शाम भगवान के अवतारों का वर्णन सुनता है, वह दुख ग्रामा विमुच्यते, दुख के समूह से मुक्त हो जाता है। उसको हम आगे पढ़ने वाले, आगे के श्लोक बड़े इंटरेस्टिंग है, तो हम जब अगले पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। इस प्रकार से भगवान लीलाएं कर रहे हैं, वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनमें भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। क्यों? क्योंकि भगवान की जैसी लीलाएं हैं बड़ी हृदय को आकर्षक करने वाली हैं, और उनके बारे में चर्चा सुनने में व्यक्ति को कौतूहल भी होता है। जैसे आप अपनी नानी से सुने होंगे मत्स्य अवतार के बारे में, है कि नहीं? आपने नानी से सुना? किसे सुना आपने मत्स्य अवतार के बारे में? किसी वक्त तो सुना होगा, तो ऐसे अपने सुनते रहते हैं। भारत समाज में बहुत फायदा है कि नानी, चाची तो नहीं, लेकिन ताई, चाची लेवल पे तो आजकल नहीं सुनते कुछ, लेकिन दादी और नानी थोड़ा बहुत समझा देती हैं कि नरसिंह अवतार। हमने बचपन में भी, बहुत छोटा था मैं तब भी, वो अमृत मंथन की हम लोगों ने समुद्र में लगे हुए हैं वो सुना है। तो अभी भी पूरी तरह धर्म नष्ट नहीं हुआ है, उसका प्रयास खूब चल रहा है, लेकिन नष्ट पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो कौतूहल रहता है, फिर उसके बारे में और अगर सुनने को मिले तो व्यक्ति जानना चाहता है भगवान के बारे में, तो फिर भगवान के बारे में सुनने की रुचि हुई, मतलब भगवान के धाम जाने की योग्यता। जो व्यक्ति भगवान के बारे में सुनना चाहता है तुरंत उसकी योग्यता प्राप्त होगी भगवान के पास जाने के लिए। भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को बदलते नहीं, अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब वह सुअर के रूप में आ रहे हैं, शुक्र के रूप में, तो सुअर नहीं है। अगर वह नरसिंह के रूप में आ रहे हैं तो वह शेर नहीं है। समझ में आ रहा है? भगवान अपने सच्चिदानंद स्वरूप को ही प्रकट करते। अब स्त्री रूप में आ रहे हैं, मोहिनी रूप में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अब तब भी वे आदि पुरुष ही हैं। तो भगवान के विभिन्न रूपों को प्रकट करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं सोचना चाहिए कि वे भौतिक प्रकृति की सृष्टि है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। उनका शरीर पूरी तरह से दिव्य होता है, यह समझते चलना चाहिए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अभी हम लोग गीता में पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी थीम है कि दो चीज व्यक्ति समझ ले, एक कि जीव जो है वह इस जगत से परे है, और दूसरा भगवान सम है, तो वह मुक्त हो जाएगा। सब मतलब हर जीव को उसके कर्म के अनुसार भगवान व्यवस्थापन करना है। ये नहीं कह सकते कि उसको ज्यादती हो रही है। ज्यादती समझते हैं आप लोग किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर वहां पार्शियलिटी भगवान में बिल्कुल नहीं। ये ऐसा क्यों हम क्यों हो जाएंगे योग्य? क्योंकि भगवान अगर अपने पे हम आरोपित करें, अरे साहब हमको बड़ी दुख दे रहे हैं भगवान, इस भावना से व्यक्ति मुक्त हो जाए। भगवान से के प्रति कंप्लेन की भावना नहीं होनी चाहिए। जो मैंने किया है उसके अनुसार मिल रहा है, अपितु भक्ति करने की वजह से मुझे बहुत कम प्राप्त हो रहा है ना। जैसे पिछली बार एक भक्त ने कंप्लेन किया कि नौकरी वाले बहुत खून पी रहे हैं। हाँ, अगर आप भक्त नहीं होते तो मतलब जो है 2 लीटर पीते, भक्त बन गए हैं तो कितना पी रहे हैं, 0.5 लीटर या 100 ग्राम, है कि नहीं? ये विश्वास होना चाहिए। और 100 ग्राम तो पिलाना ही पड़ेगा जगत में, इतना तो बनता है ना। ठीक है, कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में प्रयोजन एक ही रहता है। भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्त नहीं है। बहुत सुंदर लाइन है अगर आप विचार करें। यह है कि भगवान स्वयं भी आते हैं और अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, यह बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अभी भी हमने स्मरण किया था, ये 3rd अध्याय में, अगले अध्याय में बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कहां कहां भगवान किसी जीव को शक्ति प्रदान कर रहे हैं और कहां कहीं पे भगवान स्वयं आ रहे हैं। ये आपको अगले अध्याय में क्लियर हो जाएगा, कौन कौन से अवतार विष्णु तत्व है, कौन कौन से अवतार शक्त्यावेश है, वो सब स्पष्ट हो जाएगा। प्रयोजन क्या है कि जो जीव भगवान से विमुख है वह भगवान की ओर उन्मुख हो जाए, सेवा की वृत्ति वो आ जाए। अब आप कहेंगे फिर वही प्रश्न, अरे भगवान सर्वशक्तिमान है तो अपने आप ही जीवों को टेढ़ा सीधा कर दे अपनी तरफ। लेकिन देखिए भाई, यही सारी शक्ति भगवान में है, लेकिन भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता दी है कि वह उसे प्रेम करें या ना करें। तो इसीलिए जैसे मान लीजिए किसी दो व्यक्ति का संबंध अच्छा नहीं होता है तो दूसरे मीडिएटर को बुला लेते हैं। तो वैष्णव लोग ये महान कार्य करते हैं, वह लोगों को मदद करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा भगवान से वैमुख्य है, वैमुख्य मतलब ऐसे मुंह घुमाया हुआ है, हमें कोई मतलब नहीं भगवान से, कहाँ है भगवान, इस प्रकार की भावना से जो जीवन युक्त है उसको त्यागो और भगवान की शरण में जाओ। ये बहुत बड़ा सेवा है। बहुत बड़ा सेवा भी कम बोल दिया, सबसे बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा है कि जीवों के हृदय में भगवान के प्रति सच्ची शास्त्रिक श्रद्धा को स्थापित किया जाए। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्या सबसे बड़ी सेवा है? एक साथ नहीं, कॉन्ग्रीगेशन चैंटिंग नहीं, नहीं जपा करिए एक एक। आप बताइए माता जी मैंने क्या बोला? कुछ कुछ वाक्य ना हम बोलते हैं उसको आप थोड़ा समझेंगे तो बहुत गंभीर बात होगी। क्या सबसे बड़ी सेवा है भगवान
जो की? लोग भगवान से विमुख हैं उन्हें भगवान के बारे में बताना और उन भगवान की तरफ प्रेरित करना।
हाँ ठीक है, लेकिन मैंने अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सीजिए। सभी जीवों के जितना जता संभव हो सके जीवों के हृदय में भगवान के प्रति शास्त्रीय श्रद्धा को स्थापित करना। आप फिर से बोलिए।
जीवों के हृदय में शास्त्रीय श्रद्धा स्थापित करना भगवान के लिए।
हाँ भगवान के लिए, भगवान के प्रति। क्योंकि एक भक्त बता रहे थे, मनीष प्रभु कह रहे थे, कुछ लोग की शास्त्रीय श्रद्धा है, वेद है, वेद की ऋचाएं पढ़ेंगे, ये करेंगे, यज्ञ करेंगे, लेकिन गीता और भागवत को नहीं मानते। मैंने कहा फिर क्या फायदा हो? तो शास्त्रीय श्रद्धा तो है कुछ थोड़ी बहुत, लेकिन भगवान में श्रद्धा नहीं है। भगवान को मैं कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ? शास्त्र के अनुसार वह अगर स्थापित हो जाए तो सबसे बड़ी सेवा है। और आप जानते हैं इसके विपरीत भी सबसे बड़ी डिससर्विस क्या हो गई? लोगों की भगवान की प्रति श्रद्धा को काट देना, सबसे बड़े अपराध हो। ये
गुरु जी, वेदों में और गीता जी और भागवत में क्या अंतर है?
कोई अंतर नहीं है। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यः, सारे वेदों का उद्देश्य भगवान को जानना है। लेकिन थोड़ा अंतर भी है। वेद जो है वो पेड़ की तरह है और वेदों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। तो अगर आपको फल खाना है तो भागवत पढ़िए, और पत्ते चबाने हैं तो वेद पढ़िए, है ना? पुराणम ब्रह्म समितम और क्या है वो, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक्म काद अमृत द्रव्य संयुतम। 1.1.3 इस भागवतम का श्लोक आप देखेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो निगम कल्पतरु वेद कल्पतरु के समान है और सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उसका पका हुआ फल है, गलित फल है श्रीमद् भागवतम। तो भक्त अच्छा बता रहे थे रमाकांत प्रभु की, भाई ठीक है पेड़ और फल में अंतर नहीं है लेकिन अंतर है भी। हम वेद की अन्य रचाएं पढ़े हैं जो कर्म कांड के लिए प्रेरित करने वाली, तो क्या प्राप्त होगा? बहुत होगा, स्वर्ग प्राप्त होगा अगर ठीक से किया तो। लेकिन जो भागवत का रस है, भक्ति का रस है, तो प्राप्त नहीं हो। ज्ञान कांड में चले गए तो उपनिषद के बारे में बात कर रहे हैं और निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी सुख प्राप्त नहीं होगा। तो जो पेड़ का टहनिया है, पत्ती है, जो कुछ भी उसका फल क्या है, श्रीमद् भागवत भगवत गीता में रखा गया है। 15वें अध्याय में भगवान बहुत अच्छा बोलते हैं कि जो समझता है कि इस जगत से बाहर निकलना है, वह यस्तम वेद सब वेदवित। बहुत सुंदर श्लोक है, मैं अच्छा है कि मेरे सामने आ गया। नहीं नहीं, उसके पहले वाला श्लोक है। वो कह रहे हैं कि यस्तम वेद सब वेदवित। हाँ, तो इस प्रकार से जो इस वृक्ष को जानता है वे वेदों को वेदों को कहता है। जो इस भौतिक जगत के वृक्ष को जानता है, समझता है, से काटना है, वृक्ष मतलब ही जिसे काटा जाए, तो इस भौतिक जगत को काट करके या भौतिक अपने शरीर इच्छाओं को काट करके भगवत धाम जाना जाता जाना जाना है, ये वेदों का उद्देश्य, तो वेदों को जानता है, नहीं तो वेद को समझ नहीं पा रहा है। तो इसलिए वेदों को पढ़ने के बजाय व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को ही समझे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसी से भगवान का पकवा, वेदों का पकवा फल प्राप्त होगा और भगवान के धाम जाने की योग्यता भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, सारे हम एक और बात है, प्रभुपाद ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जिस सुख की इच्छा, जिस सुख से हम वाकई हम संतुष्ट हो सकते हैं, वह केवल भगवान के चरणों में प्राप्त होगा। ये बात आप लोग अनुभव करके समझ सकते हैं और नहीं तो थ्योरी से समझ लीजिए। हर जगह हम कुछ ना कुछ एडजस्ट करना चाहते हैं, ये स्थिति इतनी ठीक नहीं है, वह चेंज कर लेता हूँ, ये ठीक नहीं है, थोड़ा वहां कर लेता हूँ, लेकिन कहीं भी हम संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक भगवान की भक्ति प्राप्त ना हो। ये बात यहाँ बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं केवल केवल यहाँ पे, इंद्र लोक में और कहीं और लोक में भी चले जाएंगे, वहां पे भी संतुष्टि प्राप्त नहीं, यहीं से सीख लेना चाहिए। इससे फायदा क्या है, हम भक्ति करके स्वर्ग लोक जाने की इच्छा को त्याग देंगे। जैसे श्रीमद् भागवतम में 8वें स्कंद में बलि महाराज के बारे में वर्णन है ना, इंद्र के इंद्रपुरी का वर्णन है, बड़ा सुंदर वर्णन है, बड़ी सुंदर सुंदर वहां पे अप्सराएं घूम रही हैं, गार्डन है, ये है वो है, तो आप कहेंगे भागवत में स्वर्ग का वर्णन क्यों दिया गया है? तो सीधे स्वामी कहते हैं उसकी क्षण भंगुरता को दिखाने के लिए। देखो कितना सुंदर था, लेकिन अकस्मात बलि महाराज आए और घपच लिए सब कुछ, तो फिर आदमी सोचेगा ना कि अरे भाई मैं स्वर्ग जाके क्या प्राप्त करूंगा? और वैकुंठ में कोई ऐसा होता है? कभी नहीं हो सकता। तो वैकुंठ जाने के लिए ही व्यक्ति प्रयासरत रहेगा। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है, किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। आप में से कितने लोगों को विश्वास है कि भगवान का धाम है? कोई हाथ नीचे तो नहीं कर रहा है? आधा आधा मतलब शायद है, नहीं है, ऐसा पूरा है, ठीक है। उसमें कितने लोग नहीं जाना चाहते हैं? आप नहीं जाना चाहती हैं? आप क्या करेंगे, दोबारा आके पकौड़े बनाएंगी? नहीं माता जी, अब शायद मेरा प्रश्न समझ नहीं पाए, आप जाना चाहती हैं कि नहीं जाना चाहती? माता जी आपने हाथ खड़ा किया था किस लिए? जाने के लिए किया था, सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ क्या कह रहे हैं? गौ धाम नहीं, गोलोक धाम कहते हैं। गोलोक धाम और वैकुंठ सच्चिदानंद दोनों ही हैं, लेकिन मैं बार बार भूल जाता हूं, चार्ट लेके आना है। गोलोक धाम बाहर विस्तार, एक विशाल कमल पत्र की तरह है, और उसका छोटा सा अंश है वैकुंठ। तो वैकुंठ में भी जाकर भक्त जाना चाहते हैं वैकुंठ में जा सकते हैं, वहां भगवान ऐश्वर्य के रूप में दिखाई पड़ते हैं, ऐश्वर्यशाली रूप में दिखते हैं, और वहां गोलोक में भगवान के संग एकदम आत्मीयता से सेवा हो सकती है। तो इस प्रकार से रहता है, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो अगर आपने बोल दिया कि आप जाना चाहते हो तो टिकट लगता है, फ्री में तो जाते नहीं। और टिकट आप जानते हैं, टिकट है 16 माला का जप, नहीं 15 में नहीं हो जाएगा, 15.5 में कर दीजिए, चलिए इतना तो कर दीजिए कि देखिए मेरे पास कुछ शक्ति नहीं कहने की, ये प्रभुपाद जी ने सेट कर दिया है कि 15। एक भक्त हम लोग ट्रैक्टर खरीद रहे हैं तो कह रहे हैं अरे 1.5 लाख दे दीजिए, हमने कहा नहीं, हमारे प्रभु जी ने 1 लाख फिक्स कर दिया, अब हम उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम तो खाली आपको मैसेज दे सकते, आप दे सकते तो ठीक है, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। तो सोलह मलक कुछ भी नहीं है, बोलिए अगर पिछले जन्म में मतलब अन्य युगों में पैदा हो गए होते तो फिर पत्ते खा रहे हो, खाने पड़ते, तब कितना कष्ट होता है कि नहीं। हाँ, केवल सोलह माला जब कहने के लिए बोला जा रहा है तो पूरी ताकत से सोलह माला करना चाहिए। सोलह माला भी बढ़िया वाली होनी चाहिए, वही नहीं कि मैं माला कर रहा हूँ और बातें कोई हो रही हैं और दुनिया की बातें चल रही हैं। पूरी ताकत ला के, आज मैं बड़े उत्साह में था जो जब करने के लिए, मैंने कहा आज दुनिया बाहर अधर मैं जब करने जाऊंगा। जैसे करने बैठा, प्रभु जी आपके साउंड वाले का मैन का नाम क्या है, मैंने कहा भूल गया मैं। उतना क्रोध आया उसने, मैंने कहा आज इतने मूड में बैठ रहे हैं, इतने दिन पहले बात तो सांस ही नहीं चल रही थी जुकाम की वजह से, आज पहली बार सांस चल रही है, और जैसे सांस चलना चालू कर दिया, साढ़े साढ़े पांच बजे तो मैं क्या आवश्यकता है जानने की साउंड मैन का नाम क्या है। क्रोध मैंने बोले फिर भूल गया मैं, भूल गया ना, कोई आवश्यकता नहीं होती, पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरा ताकत। मेरा टारगेट है द्रविड़ प्रभु जैसे जब करना है, वो द्रविड़ प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनको रोज अनुभव होता है कि दर्शनार्थी न जाऊं माला करता रहूं, रोज एवरी डे यस टेस्टफुल चैंटिंग। वो जिंदा है अभी, अब मिल नहीं पाया क्योंकि वृंदावन कभी आते नहीं, वो जब करते हैं जब तो मैं, बड़ा अच्छा उनका वक्तव्य है उनके बारे में, मुकुंद प्रभु बोल रहे थे प्रभुपाद जी के शिष्य की, द एक्सटर्नल वर्ल्ड सीम्स सीज टू एग्जिस्ट, बाहर की दुनिया उनके लिए है ही नहीं, ऐसा जब करते जब के समय में, तो ये भाव ले करके हमें जब करना चाहिए, ये टारगेट रखना चाहिए, भाई प्रभुपाद जी के शिष्य ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जितना भी हम माला करें, माला सोलह ही कर रहे हैं, तो पूरी ताकत लगाना चाहिए कि उस टाइम ऐसे फोन वोन बंद करके बढ़िया से करें। और मैं ये देख रहा हूं जपर इसके द्वारा, मैं देख रहा हूं कि जो भक्त बोल रहे थे कि मैं माला कर नहीं सकता 7:30 पे, अभी गुणमणि प्रभु आपने देखा होगा हरियाणा के, तो वो 7:30 बजे बड़े आराम से माला कर ले रहे हैं। तो बात केवल संकल्प की, अब हमको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है कि दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना मैं स्त्री हूं ना पुरुष हूं ना मैं किसी का पति हूं ना पत्नी हूं, कुछ भी नहीं, पूरा ताकत से सोलह माला किया जाए। पूरी ताकत मतलब जितना हम अटेंटिवली कर सकते उतना करने का प्रयास करें, बहुत बहुत हम बहुत तीव्र प्रगति कर सकते हैं इस हरि नाम के द्वारा, बहुत आसान है और बहुत तीव्र प्रगति कर सकते हैं। जैसे आज मैं पूछ रहा था आप क्यों नहीं कर रही माता जी, बोली यार दिक्कत तो दिक्कत, मुझे अच्छा लगता है। अब ये आश्चर्य आपको अच्छा लगता है तब क्यों नहीं करते, सोचिए, ना अच्छा लगे, कठिन लग रहा हो, तपस्या लग रहा हो, अलग बात है, जब अच्छा भी लग रहा है और वह करके आप भगवान के धाम जा सकते हैं तो क्या दिक्कत है। और अद्भुत बात यह भी है कि आप अकेले नहीं जाओगे, अगर आप गए तो दो चार लोग घसीट के लेके जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर पत्नी जाती है तो पति भी घिसट के चले जाएंगे, अगर पति जाते हैं तो पत्नी भी चली जाएगी, और दोनों जाते हैं तो बच्चे बच्चे भी सब बीन बांध लेंगे, सब चले जाएंगे। सबसे बड़ा कल्याण करेंगे अगर हम भगवान के धाम चले गए तो। ध्रुव महाराज आप जानते ही हो प्रत्यक्ष उदाहरण, माँ पिता सब 21 पीढ़ियां सब चली जाएंगी, इसलिए पूरी ताकत लगानी चाहिए। बाकी जब आप आईएएस ऑफिसर बने नहीं बने, आईपीसीएस ऑफिसर बने नहीं बने, वो सब कुछ बगल वाले को फर्क पड़ता है, भाई आप आईएएस ऑफिसर बन गए तो भाई भी बन जाएगा क्या, हो सकता भाई कोई कुछ भी कार्य करे, रिक्शा वाला बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन भगवत धाम चले गए तो पूरा परिवार चला जाएगा साथ में। ये मैं नहीं बोल रहा, मैंने शेयर किया था प्रभुपाद जी अपने वक्तव्य में लिखते हैं, अभक्त हो तो भी वह चला जाएगा, इतना फायदा है, तो इसी में ताकत लगाना चाहिए। ठीक है, लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। लोग भगवान के धाम के बारे में जानते नहीं तो प्रयास क्या करेंगे बताइए, सुनेंगे उसके बारे में खूब अच्छे से तो प्रयास करेंगे। अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं या ईश पुत्र के रूप में अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि बनकर आते हैं। ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार केवल मानव समाज में ही नहीं करते, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य में भी चलता रहता है। इस संबंध में एक उक्ति है भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की, वो चंद्रमा की ओर देखे और बोले वहां बहुत इंद्रिय तृप्ति चल रही है। मतलब उनकी कुछ प्लानिंग वहां प्रचार करने की विधि, अब लोग कहेंगे क्या क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन जो महान आचार्य लोग हैं वो इस प्रकार से नहीं देखते, वो इस प्रकार से बंधन में नहीं है कि हम जैसे यहां पैदा हो गए तो बस यहीं पैदा होंगे, हमको पता नहीं अब अगली जन्म कहां प्राप्त होगा, ऐसा नहीं होता है। नारद जी तो सब जगह प्रचार कर रहे हैं, आप देख ही रहे हो, उनके डिसाइपल हर लोक में है, प्रैक्टिकली हर लोक में, कीड़ा भी है, सांप भी है, मृगारी भी है, प्राचीन वर्षद भी है, प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, युधिष्ठिर महाराज को भी शिक्षा दे रहे हैं, निमि महाराज को दे रहे हैं, सबको शिक्षा दे रहे हैं, यहां तक कि ऊपर के लोगों में भी बात चल रही है। तो इसलिए एक महान वैष्णव हर प्रकार के जगत में प्रीचिंग कर रहे हैं, भगवान का एक ही उद्देश्य है कि लड़का मेरा वापस आ जाए, पास हो जाए इस बार एग्जाम में। ठीक है ना, कोई प्रश्न है यहां तक? यस, पूछिए।
ये प्रभु जी सोलह माला से मतलब निश्चित भगवत धाम पहुंच जाएंगे ऐसा मतलब?
नहीं नहीं हाँ भाई देखिए ये एक है वृत्यार श्लोक में भी कोई याद नहीं आ रहा है, भगवान नरसिंह देव आए, क्या श्लोक है वृत्त की बात को मुझसे अभी शब्द श्लोक मेरे मुंह से नहीं आ रहा है, लेकिन वृत्त की वृत्त के वचन को सत्य करने के लिए प्रहलाद महाराज ने बोला हाँ यहाँ भगवान है पिलर में, तो हिरण्यकश्यप ने कहा है, तो कहा है यहीं पे है, तो इस बात को सत्य करने के लिए भगवान ऐसे प्रकट हो गए। तो क्या श्लोक था बहुत सुंदर, सत्यम 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 विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य की भाषा को सत्य करने के लिए, भृत्य मतलब सेवक की भाषा को सत्य करने के लिए, न मृगेंद्र न मानुष मस करके भगवान निरहरि प्रकट हुए थे। तो भगवान के भक्त ने जो लिख दिया बोल दिया उसको भगवान पूर्ण करते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। वसुदेव दत्त जो प्रहलाद महाराज के अवतार हुए महाप्रभु से कहते हैं, सुना होगा आपने कि जीव जितने मात्र हैं, जितने जीव मात्र हैं उन सबका उद्धार कर दीजिए, मैं उनके पापों को नरक में भोगूंगा। तो महाप्रभु कहते हैं कि वासुदेव कृष्ण इतने असमर्थ नहीं है कि तुमको पाप भोगने देंगे, तुम्हारी इच्छा मात्र से सारे जीवों को भगवान के धाम भेज देंगे। और उसके बाद फिर वह हम लोग नेक्स्ट बैच है, मतलब उनकी इच्छा से सारे लोग चले गए, तो कहेंगे यहाँ बाकी दुनिया कैसे चल रही है, भगवान ने फिर से भर दिया है स्थिति को, हम लोग नेक्स्ट बैच है। तो हमारे लिए प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी इतने महान आचार्य हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते, और कल्पना नहीं करने की जरूरत है, आप थोड़ा प्रीचिंग करना शुरू कीजिए तब समझ में आए कितना मुश्किल होता है प्रीचिंग करना भारत में, है कि नहीं, और विदेश में कितना कठिन होता है, विदेशियों को इतना सुंदर भक्त बना देना, ये अचिंत्य शक्ति का ही द्योतक है। तो प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्य की शरण में हम हैं, उन्होंने बोला है तो कह देंगे, क्या दिक्कत है। तो लेकिन वो सोलह माला वैसा नहीं होना चाहिए, सोलह माला ऑफेंसलेस होना चाहिए, मतलब अभी टीवी देखते माला कर रहे हैं, ये बातें चल रही हैं, हरे के कथा चल रही थी, हरे के हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, ऐसे थोड़ा ना माला होता भगवान का। ऐसे आज हम देख रहे थे एक भक्त मंगल आरती हो रही है, महाराज जी गा रहे थे, महाराज गा रहे थे, वैष्णव महाराज गा रहे थे, तो जब महाराज गाए तो वो जप कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, माल जी गा रहे हैं विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठ जीव, तो इतने में हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम, फिर जब उन्हें गाने का नंबर आ गया तो फिर वो भी गा रहे हैं, फिर जब महाराज गाएंगे तो फिर जप कर रहे, तो ये अपराध है, नाम अपराध है। जब आप भजन कर रहे हैं तो फिर भगवान के संग एकदम कृष्ण भाव से कीजिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रभु जी को माइक दीजिए, हमारे आर्मी वाले प्रभु जी को सही से उत्तर देना कि आपके जीवन के है ना,
हरे कृष्ण।
जब प्रभु जी आप किससे लड़ाई करते हैं, मिलिट्री कौन सी थे, आतंकवादियों से लड़ाई कर रहे थे ना, हाँ या ना,
हाँ
गोली चला रहे थे हाँ या ना,
हाँ प्रभु जी,
व्हाट्सएप चेक कर रहे थे हाँ या ना,
ना
कहेंगे उस टाइम था ही नहीं, अब उस समय तो मोबाइल जेब में नहीं रख सकते, अरे जरा पत्नी से बात कर लूं, बच्चे से बात कर लूं, वर्क ना, ऐसा होता है क्या बताइए, ये गोली चल रही है आतंकवादी के खिलाफ और हम यहाँ फोन पे बात भी करें, सब्जी के रेट क्या आलू आ गया क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता,
प्रभु जी उधर ही ध्यान रहता है,
यस, क्योंकि हम उसको महत्वपूर्ण समझते हैं, जैसे आप गोली चला रहे थे वैसे हरि नाम चलाना है, और ऐसे तो नहीं कि गोली चला दो लगे लगे नहीं लगे लगे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा तो नहीं होता, चाहते कि गोली लगे एक एक उससे आतंकवादी मरे, ये जो आतंकवादी है छह आतंकवादी हैं, कौन से, काम क्रोध लोभ मोह माद मास्टर, ये असुर हमारे हृदय में ही है, गोली बाहर नहीं चलानी, गोली कान में चलानी, हरे कृष्ण बोलना है और सुनना है, और भगवान ही आकर के कान के द्वारा प्रवेश करेंगे हृदय में और छह आतंकवादी को मार देंगे। और आप जानते हो कि जो देवकी के छह पुत्र थे उसका संदेश है, छह पुत्र असुर थे पहले, जब वो मरेंगे तब बलराम जी आएंगे हृदय में, तब उसके बाद भगवान कृष्ण आएंगे। तो जैसे आप गोली चलाते थे ना ऐसे करके, उसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र जप करना है। बहुत ये मैं खाली मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने पहले भी आपको भेजा था कि धनुष है ये महामंत्र और ये तीर है ये जीव अपने आप को इस महामंत्र के द्वारा भगवान को समर्पित कर रहा है, और भगवान को जो तीर लगता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं।
और प्रभु जो सुबह जप होता है वो बाद में नहीं होता,
यस, ये बहुत बहुत सारे लोगों का अनुभव है कि जो सुबह आप जप करते हो वैसा नहीं होता हर दिन। अब मैं थोड़ा सा स्टॉप द रिकॉर्डिंग बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत अधिक समय भी नहीं है, अभी एक सत्यसेन प्रभु हुए।